फेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए $1.6 बिलियन की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की घोषणा की। फेडरल पुलिस को पहली बार घरेलू कंप्यूटर नेटवर्क में पेनिट्रेट करने की इजाज़त देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को हमले से बचाने के लिए दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों में देश भर में साइबर अटैक्स बढ़े हैं। 9 ऑस्ट्रेलियाई शराब रिफाइनरियों को जून माह में ऑफलाइन होना पड़ा। NSW के पोर्ट कैम्ब्रेला का स्टील वर्क्स प्लांट मई में बंद करना पड़ा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कंपनी टोल पर मार्च और अप्रैल में रैंसम के लिए साइबर हमले हुए। पूर्व नेशनल साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर एलिस्टर मैकगिबन कहते हैं कि साइबर अपराधी अब पेंडेमिक का भी फायदा उठा रहे हैं।
There's no doubt that we've seen an uptick in both criminals and nation states using COVID-19 as their opportunity. So scammers will use COVID as an opportunity just to make us part with our money. Nation states, of course, are using COVID-19 research and development as an opportunity to steal that and take that back to their one-party states.
लेकिन असलियत ये है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स पर डाटा चुराने के लिए हमले पेंडेमिक से पहले से हो रहे हैं। 2019 में टोयोटा के ऑस्ट्रेलियाई मुख्यालय का डाटा ब्रीच हुआ। 2018 में रक्षा विभाग के शिपबिल्डर एस्टल कंपनी पर साइबर हमला हुआ। एस्टल के CEO डेविड सिंगल्टन ने ये कहा,
We had a cyber attack at Austal a couple of years ago. It really involved somebody getting access into our computer systems through knowledge of a password, which we believe had been posted on the dark web and was bought by somebody who then used that to get access into the system.
होम अफेयर्स मिनिस्टर पीटर डटन ने घोषणा की कि फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल इंटेलिजेंस कमीशन को अधिकार दिया जाएगा कि वे निजी कंप्यूटर नेटवर्क में जा सकें। हालांकि इसके लिए उन्हें वारंट्स लेना जरूरी होगा।
They can only be exercised in relation to those people who are alleged to be committing very serious offences. And there's more detail that we'll provide in time. But we are talking about terrorists. We're talking about people involved in very significant drug operations. We're worried about those pedophile networks in particular. We know now that the dark web is essentially the sewer of the internet.
श्री डटन का ये भी कहना है कि नई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध होगा।
So if you're a pedophile, you should be worried about these powers. If you're a terrorist, you should be worried about these powers. If you're committing a serious offence in relation to trafficking of drugs, you should be worried about these powers as well. If you're part of the Australian community, the 99% of people that aren't involved in those activities, I don't think you have anything to concern yourself with.
साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के द्वारा कंपनियों और उनके निदेशकों को निजी तौर पर साइबर सिक्योरिटी बेसलाइन यानी कम से कम अर्हता का पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक होगा। एलिस्टर मैकगिबन कहते हैं कि इस नियम के लिए ये सही समय है।
It's very significant. Just like if you went back several years, boards would probably scoff at the idea of being responsible for workplace health and safety. And now it's one of the major considerations of boards. So too will cybersecurity risk management. We know that cybersecurity risk is an existential threat, not just to individual business survival, but to our very survival as a society.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के द्वारा विश्वविद्यालयों, जरूरी मूलभूत ढांचे और फेडरल संस्थानों को सुरक्षित बनाया जाएगा। लेकिन श्री मॉरिसन ने ये नहीं बताया कि ये हमले किस सोफिस्टिकेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर के द्वारा हो रहे हैं।
It's about protecting Australia and it's about protecting Australians from wherever potential threats come. And whatever form those threats might take. And those threats emerge in all sorts of different circumstances.